अध्याय 10। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम पराक्रमी सम्राट था। उसके पश्चात संभवतः बुद्धगुप्त को छोड़कर कोई भी ऐसा योग्य शासक न हुआ जो उसके विस्तृत साम्राज्य की रक्षा कर सकता। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य लगभग एक शताब्दी तक जीवित रहा, परंतु निश्चित रूप से यह उसका अवनति काल था। इस काल के अधिकांश साक्षी इतने अस्पष्ट और अल्प है कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों का निश्चित क्रम भी बताना बड़ा कठिन है। पूर्व गुप्त संभवतः स्कंदगुप्त के कोई पुत्र न था, तो उसके पश्चात 467 ईस्वी में उसका भाई पुरुगुप्त सिंहासन पर बैठा। हमें इसका ज्ञान भीतरी राजमुद्रा से होता है। इसमें महाराजा अधिराज पुरुगुप्त को कुमारगुप्त प्रथम और अनंत देवी का पुत्र कहा गया है। बौद्ध धर्मावलंबी। इस अभिलेख में पुरुगुप्त के साथ परम भागवत की उपाधि का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें इससे अनुमान किया जा सकता है कि वह वैष्णव न था वरन बौद्ध था। उसकी पुष्टि परमार्थ लिखित वसुबंधु की जीवनी से होती है। इसमें अयोध्या के राजा विक्रमादित्य का उल्लेख है। वह बौद्ध था और उसने अपने पुत्र बालादित्य की शिक्षा दीक्षा के लिए वसुबंधु को नियुक्त किया था। हरनले महोदय और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने विक्रमादित्य का समीकरण पुरुगुप्त के साथ और उसके पुत्र बालादित्य का समीकरण नरसिंह गुप्त के साथ किया है। एएन महोदय के अनुसार पुरुगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर श्री विक्रम की उपाधि है। भीतरी राज मुद्रा में पुरुगुप्त के पुत्र का नाम नरसिंह गुप्त मिलता है। नरसिंह गुप्त ने अपनी मुद्राओं पर बालादित्य की उपाधि उत्कीर्ण कराई थी। पश्चिमी भारत की हानि। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्तों का कोई भी अभिलेख अथवा उसका सौराष्ट्र और पश्चिमी मालवा में नहीं मिला है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि ये प्रदेश पुरुगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य के बाहर निकल गए थे। पुरुगुप्त ने अपना कोई भी अभिलेख उत्कीर्ण नहीं कराया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका शासनकाल संकटपूर्ण था। कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं जिनके अग्रभाग पर अश्वारोही राजा सिंह का वध करते हुए दिखाया गया है। उसके दाहिने ओर गरुड़ ध्वज है। गोलाकार रूप में विजित वसुधाम दिव्य जयति लिखा है। पृष्ठभाग पर लक्ष्मी का चित्र है। नाम श्री प्रकाशादित्य मिलता है। डॉक्टर स्मिथ, डॉक्टर अल्टेकर आदि विद्वानों ने प्रकाशादित्य का समीकरण पुरुगुप्त के साथ किया है। कुमारगुप्त द्वितीय। भीतरी राजमुद्रा में तीन राजाओं के नाम मिले हैं, पुरुगुप्त, उसका पुत्र नरसिंह गुप्त और उसका पुत्र कुमारगुप्त। भीतरी राजमुद्रा और सारनाथ बुद्ध प्रतिमा लेक के कुमारगुप्त। श्री पन्नालाल के अनुसार पुरुगुप्त के पश्चात नरसिंह गुप्त राजा हुआ और नरसिंह गुप्त के पश्चात कुमारगुप्त। उन्होंने भीतरी राजमुद्रा के कुमारगुप्त का समीकरण सारनाथ में प्राप्त एक बुद्ध प्रतिमा पर उल्लेखित कुमारगुप्त के साथ किया है। इसमें कुमारगुप्त के शासन की तिथि 154 गुप्त संवत दी गई है। यदि इन दोनों कुमारगुप्तों को एक ही व्यक्ति मान लिया जाए तो फिर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 467 ईस्वी और 476 ईस्वी के बीच के 9 वर्षों के अल्पकाल में पुरुगुप्त नरसिंह गुप्त और 9 वर्षों के अल्पकाल में पुरुगुप्त को रखना पड़ेगा। यह अत्यंत अस्वाभाविक प्रतीत होता है। पुनः भीतरी राजमुद्रा का कुमारगुप्त वैष्णव था, जबकि सारनाथ बुद्ध प्रतिमा लेख का कुमारगुप्त बौद्ध। इस कारण भट्टशाली, बशाक आदि विद्वानों ने भीतरी राजमुद्रा के कुमारगुप्त और सारनाथ बुद्ध प्रतिमा लेख के कुमारगुप्त को भिन्न भिन्न व्यक्ति माना है। चीनी लेखों सी यू की वेनसांग की जीवनी और से किया पेंगचे से प्रकट होता है कि शक्रादित्य ने नालंदा बिहार की स्थापना की थी। डॉक्टर सिन्हा के मतानुसार यह शक्रादित्य कुमारगुप्त द्वितीय था। शासनकाल ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुगुप्त का शासन 467 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 476 ईस्वी अथवा उसके कुछ पहले समाप्त हुआ, क्योंकि सारनाथ बुद्ध प्रतिमा लेख के अनुसार 473 ईस्वी में कुमारगुप्त द्वितीय राज्य कर रहा था। उसने 476 ईस्वी तक राज्य किया। मुद्राएं। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि कुमारगुप्त द्वितीय और पुरुगुप्त का क्या संबंध था। एलन महोदय ने कुमारगुप्त की मुद्राओं को भिन्नता के आधार पर दो कोटियों में विभक्त किया है। संभव है कि एक कोटि की मुद्राएं सारनाथ बुद्ध प्रतिमा लेख के कुमारगुप्त द्वितीय की हो और दूसरी कोटि की मुद्राएं भीतरी राजमुद्रा के कुमारगुप्त तृतीय की हो। बुद्धगुप्त वेंगसांग की जीवनी का कथन है कि बुद्धगुप्त ने अपने पुरोगामी नरेश से राज्य छीन लिया था। यदि यह कथन सत्य है तो इससे यह कल्पना की जा सकती है कि बुद्धगुप्त ने कुमारगुप्त द्वितीय के हाथ से सिंहासन छीना था। हरनले महोदय ने बुद्धगुप्त को पूर्वी मालवा का स्थानीय शासक माना था। था क्योंकि भीतरी राजमुद्रा में उसका नाम नहीं है और उस समय तक उसका एरन अभिलेख तथा सिक्के पूर्वी मालवा में ही मिले थे। एरन महोदय भी बुद्धगुप्त को पूर्वी मालवा का स्थानीय शासक मानते थे, परंतु उसके विषय में आज तक कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं और जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उसके आधार पर सिद्ध हो गया है कि वह गुप्त सम्राट था और अवनति काल के गुप्त सम्राटों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। उसके अभिलेख नालंदा राजमुद्रा से सिद्ध होता है कि बुद्धगुप्त पुरुगुप्त का पुत्र था। सारनाथ अभिलेख से उसके शासन की 157 गुप्त संवत तिथि मिलती है, इसमें वह महाराज कहा गया है। इस आधार पर डॉक्टर NN दास गुप्त ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस तिथि तक बुद्धगुप्त स्वतंत्र शासक न था, परंतु यह मत असंगत है क्योंकि इसी अभिलेख में यह भी उल्लिखित है कि बुद्धगुप्त पृथ्वी पर राज्य कर रहा था, जिसका अर्थ यह है कि वह सर्वसत्ताधारी सम्राट था। दामोदर पूर्व ताम्रपत्र में उसे महाराजाधिराज कहा गया है और उसके शासन की 163 गुप्त संवत तिथि मिलती है। पहाड़पुर में एक दूसरा ताम्रपत्र मिला है, इसकी तिथि 159 गुप्त संवत है जो 478 ईस्वी के बराबर है। इसमें राजा की उपाधि परम भट्टारकर दी गई है, यद्यपि उसका नाम नहीं है। अनुमानता यह बुद्धगुप्त का ही लेख है। इस बंगाल प्रदेश में उसके दो सामंत उपरिक महाराज ब्रह्मदत्त और उपरी महाराज जयदत्त शासन करते थे। 165 गुप्त संवत के एरड अभिलेख से प्रकट होता है कि यमुना और नर्मदा के बीच के प्रदेश में गुप्त संवत का सामंत महाराज सुरश्मि चंद्र शासन कर रहा था और सुरश्मि चंद्र की अधीनता में महाराज मातृ विष्णु एरड प्रदेश में शासन कर रहा था। उसकी मुद्राएं बुद्धगुप्त की चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिन पर मयूर की मूर्ति है। डॉक्टर SK सरस्वती ने उस धनुर्धारी शैली स्वर्ण मुद्राओं को बुद्धगुप्त की मुद्रा कहा है। इस मुद्रा के पृष्ठ भाग पर श्री विक्रमा लिखा हुआ है। सरस्वती महोदय के अनुसार इस पर लेख पूर्ण नहीं वरन बुद्धगुप्त है। श्री विक्रम विरुद्धधारी कुछ अन्य मुद्राएं भी हैं जिन पर कोई नाम नहीं है। डॉक्टर अल्टेकर ने इन्हें भी बुद्धगुप्त की मुद्राएं बताया है। प्रतापी सम्राट इन सामंत इन समस्त साक्ष्यों से प्रकट होता है कि बुद्धगुप्त वास्तव में एक पराक्रमी सम्राट था। उसने किसी सीमा तक गुप्त वंश की विलुप्त गरिमा की पुनर्स्थापना की। साम्राज्य विस्तार उसका साम्राज्य उत्तरी बंगाल और साम्राज्य विस्तार उसका साम्राज्य उत्तरी बंगाल से पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। इसके अंतर्गत यमुना और नर्मदा के बीच का संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था। उसकी चांदी की मयूर शैली की मुद्राएं भी मध्य प्रदेश पर उसका अधिकार सिद्ध करती हैं। शासनकाल सारनाथ लेख से प्रकट होता है कि बुद्धगुप्त के शासन की प्रथम तिथि 157 गुप्त संवत है। उसके शासन की अंतिम तिथि 175 गुप्त संवत उसकी मुद्रा से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्मावलंबी चीनी ग्रंथों सी यू की वेनसांग की जीवनी और सी किया फेंग से प्रकट होता है कि बुद्धगुप्त राज ने नालंदा विहार को दान दिया था। संभवतः वह बौद्ध था क्योंकि उसके किसी भी लेख में उसके लिए परम भागवत की उपाधि का प्रयोग नहीं किया गया है। तथागत गुप्त वैन्य गुप्त उपयुक्त चीनी ग्रंथों से प्रकट होता है कि बुद्धगुप्त के पश्चात तथागत गुप्त राजा हुआ। गुणेधर ताम्रपत्र से एक राजा वैन्यगुप्त का पता चलता है। इसकी तिथि 188 गुप्त संवत है। वैन्यगुप्त की नालंदा में राजमुद्रा मिली है और चीनी साक्ष्यों के अनुसार तथागत गुप्त ने नालंदा विहार को दान दिया था। इन तथ्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तथागत गुप्त और वैन्यगुप्त एक ही व्यक्ति थे। स्वतंत्र शासक गुणेधर ताम्रपत्र में वैन्यगुप्त को महाराज कहा गया है। इसके अनुसार इसने बौद्ध विहार को कंतेड़ दक में ग्रामदान किया था। इस अभिलेख में उसके गवर्नर महाराज रुद्रदत्त था विषयपति विजयपति के ही नाम मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वह सर्वसत्ताधारी सम्राट था। नालंदा राजमुद्रा में वैन्यगुप्त की उपाधि महाराजाधिराज मिलती है। मुद्राएं उसकी एकमात्र धनुर्धारी शैली की मुद्राएं मिली है। रैप्सन महोदय के ने इन पर चंद्र पढ़ा था और इस आधार पर इतिहास में चंद्रगुप्त तिथि की कल्पना की गई है, परंतु गुणेधर ताम्रपत्र की प्राप्ति के पश्चात डॉक्टर DC गांगुली ने इन मुद्राओं पर वैन्य पढ़ा। अब अधिकांश विद्वान इन मुद्राओं को वैन्यगुप्त की ही मुद्राएं बताते हैं। इन मुद्राओं पर उसकी उपाधि द्वादशादित्य मिलती है। राज्य विस्तार वैन्यगुप्त के अभिलेख और मुद्राएं बंगाल में ही मिली हैं, अतः कहना कठिन है कि बंगाल के बाहर किन प्रदेशों पर उसका अधिकार था। आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में एक राजा द्वादश का उल्लेख है। संभव है कि यह वैनगुप्त द्वादशादित्य ही हो, परंतु इस ग्रंथ का यह भी कथन है कि कुछ मास के शासन के पश्चात यह अपने पिता चंद्र और पितामह की भांति मार डाला गया। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन कथनों में कितनी सत्य है, इन कथनों में कितनी सत्यता है। धर्म नालंदा राजमुद्रा में वैनगुप्त को परम भागवत कहा गया है। उसकी मुद्राओं पर गरुड़ ध्वज का चिन्ह भी मिलता है। इनसे सिद्ध होता है कि वह वैष्णव था, परंतु वह बौद्ध धर्म के प्रति भी उदार था। गुनार घर ताम्रपत्र बौद्ध विहार को दिए गए उसके भूमि दान का उल्लेख करता है। भानुगुप्त 191 गुप्त संवत के एरड अभिलेख से प्रकट होता है कि महान राजा भानुगुप्त के साथ गोपराज ने एरड में एक सुमहत युद्ध किया था। इस युद्ध में गोपराज मारा गया और उसकी पत्नी अपने पति के शव के साथ सती हो गई थी। भानुगुप्त का अन्य कोई लेख प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी कोई मुद्रा भी नहीं मिली है। इस एरड अभिलेख में भी उसके लिए केवल राजा की उपाधि का प्रयोग किया गया है। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर जायसवाल और डॉक्टर राय चौधरी के इस मत को स्वीकार करना कठिन है। वह एक स्वतंत्र गुप्त सम्राट था। इन दोनों विद्वानों ने इसका समीकरण वेनसांग के बालादित्य के साथ किया है, परंतु वेनसांग का बालादित्य नरसिंह गुप्त प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी मुद्राओं पर बालादित्य की उपाधि मिलती है। भानुगुप्त गोविंद गुप्त और घटोत्कच गुप्त की भांति गुप्त राजकुमार हो सकता है, परंतु राजा की उपाधि से वह पूर्वी मालवा का गवर्नर प्रतीत होता है। संभव है कि यह नरसिंह गुप्त बालादित्य की अधीनता में पूर्वी मालवा में शासन करता था। नरसिंह गुप्त बालादित्य भीतरी राजमुद्रा से प्रकट होता है कि यह पूर्व गुप्त और श्री वत्स देवी का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम कुमार गुप्त द्वितीय था। की जीवनी और वेनसांग की जीवनी और से किया फेंके ने नालंदा विहार के निर्माण और विकास के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख किया है। पांच राजाओं ने इसका निर्माण किया। पहला शक्रादित्य था, उसने अपना विहार बनवाया, और दूसरा राजा बुद्धगुप्त था, तीसरा तथागत गुप्त था, और चौथा बालादित्य था, और पांचवा व्रज था। नरसिंह गुप्त का समीकरण वेनसांग के बालादित्य से किया जा सकता है, क्योंकि नरसिंह गुप्त की मुद्राओं पर उसकी उपाधि बालादित्य मिलती है। कुछ विद्वान निम्नलिखित आधार पर इस समीकरण का विरोध करते हैं। पहला, नरसिंह गुप्त के पिता का नाम पुरुगुप्त था, जबकि वेनसांग के अनुसार उसका पिता तथागत गुप्त था। दूसरा, नरसिंह गुप्त का पुत्र कुमार गुप्त तिथि था, जबकि वेनसांग के अनुसार उसका पुत्र व्रज था। परंतु इस आपत्ति में कोई बल नहीं है, क्योंकि वेनसांग केवल उन राजाओं के नाम देता है जिन्होंने नालंदा विहार को दान दिए थे। इनके बीच में कुछ और भी राजा हो सकते हैं जिन्होंने नालंदा विहार को दान ना दिया हो। इसके अतिरिक्त वह बालादित्य तथागत गुप्त और व्रज का संबंध नहीं बताता। परमार्थ ने वसुबंधु की जीवनी लिखी है, उसमें उसने विक्रमादित्य और उसके पुत्र बालादित्य का वर्णन किया है। एलएल महोदय का मत है कि विक्रमादित्य पूर्व गुप्त था और बालादित्य उसका पुत्र नरसिंह गुप्त। मिहिर कुल से युद्ध वेनसांग के विवरण से प्रकट होता है कि मिहिर कुल ने बालादित्य को अपने अधीन कर लिया था और उसने कर देना स्वीकार कर लिया था। बालादित्य बौद्ध था और मिहिर कुल बौद्ध विरोधी। मिहिर कुल के बौद्ध विरोधी कार्य जब असहाय हो गए तो बालादित्य ने उसे कर देना बंद कर दिया। मिहिर कुल ने उस पर आक्रमण किया। प्रारंभिक असफलता के पश्चात बालादित्य मिहिर कुल को बंदी बनाने में सफल हुआ। वह मिहिर कुल की हत्या करना चाहता था, परंतु राजमाता के हस्तक्षेप पर उसने उसे मुक्त कर दिया। यूनानी लेखक कास्मस ने मिहिर कुल का उल्लेख गोल के रूप में किया है और कहा है कि यह भारतवर्ष का स्वामी था। यह लेख 535 ईस्वी के लगभग लिखा गया था। अतः इसी तिथि के आसपास प्रारंभ में बालादित्य की पराजय और अंत में मिहिर कुल की पराजय रखी जा सकती है। बौद्ध वेनसांग के वर्णन से प्रकट होता है कि नरसिंह गुप्त बौद्ध था। इस कथन की पुष्टि परोक्ष रूप से भीतरी राजमुद्रा लेख से भी होती है। इसमें नरसिंह गुप्त के लिए परम भागवत की उपाधि का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि परमार्थकृत वसुबंधु की जीवनी से प्रकट होता है कि अयोध्या का राजा विक्रमादित्य वसुबंधु के प्रभाव में बौद्ध हो गया था और उसने अपने पुत्र बालादित्य की शिक्षा के लिए वसुबंधु को नियुक्त किया था। जब बालादित्य राजा हुआ तो उसने वसुबंधु को अपनी राज्यसभा में आमंत्रित किया। अनेक विद्वान विक्रमादित्य और बालादित्य का समीकरण क्रमशः पुरुगुप्त और नरसिंहगुप्त के साथ करते हैं। वेनसांग का कथन है कि मिहिर कुल को पराजित करने के पश्चात नरसिंहगुप्त ने राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। कुमारगुप्त तिथि भीतरी राजमुद्रा इसी कुमारगुप्त तिथि का उल्लेख है अभिलेख है। इससे प्रकट होता है कि यह पुरुगुप्त का पौत्र और नरसिंहगुप्त का पुत्र था। इसकी माता का नाम श्रीदेवी था और आर्य मंजुश्री मूल कल्प में इसे कुमाराख्य कहा गया है। भीतरी राजमुद्रा में इसे परम भागवत कहा गया है। इस पर गरुड़ का चित्र भी बना हुआ है, अतः यह बौद्ध प्रतीत होता है। ब्रज वेनसांग ने व्रज नामक राजा को बालादित्य के पश्चात रखा है। भीतरी राजमुद्रा में कुमारगुप्त तिथि नरसिंहगुप्त के पश्चात आता है, अतः अनुमान किया जा सकता है कि कुमारगुप्त तिथि और व्रज एक ही व्यक्ति थे। राय चौधरी का मत था कि व्रज गुप्त वंश का अंतिम राजा था। मंदसौर अभिलेख के यशोधर्मा ने लौहित प्रदेश तक आक्रमण किया। इस में उसने व्रज को मार डाला। विष्णुगुप्त नालंदा की एक राजमुद्रा से प्रकट होता है कि विष्णुगुप्त कुमारगुप्त का पुत्र और नरसिंहगुप्त का पौत्र था। कालीघाट मुद्रा भांड में उसकी मुद्राएं वैन्यगुप्त नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त की मुद्राओं के साथ मिली हैं। इन समस्त मुद्राओं की धातु अशुद्ध और कलाहीन है। नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त की मुद्राओं में स्वर्ण 54% है, जबकि विष्णुगुप्त की मुद्राओं में यह केवल 43% है। कला की दृष्टि से भी विष्णुगुप्त की मुद्राएं नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त की मुद्राओं से हीनतम है। मुद्राओं पर विष्णुगुप्त की उपाधि चंद्रादित्य मिलती है। यह गुप्त वंश का अंतिम राजा प्रतीत होता है। इसके पश्चात लगभग 550 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का विलोप हो गया। गुप्त साम्राज्य का पतन, गुप्त सम्राटों ने लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक शासन किया। तत्पश्चात उनके साम्राज्य का विलोप हो गया। गुप्त साम्राज्य की अवनति स्कंदगुप्त के शासन के अंत से ही प्रारंभ हो गई थी। इसके अनेक कारण बताए जा सकते हैं। पहला, निर्बल उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त की मृत्यु के उपरांत का काल गुप्त साम्राज्य की अवनति का काल कहा जा सकता है। इस काल में बुद्धगुप्त के अतिरिक्त कोई भी ऐसा गुप्त नरेश नहीं हुआ जिसे शक्तिशाली कहा जा सके। ये नरेश न तो दूरस्थ प्रदेशों के सामंतों को अपने अधीन रख सके और न विदेशी आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा कर सके। दूसरा, उत्तराधिकार के युद्ध। गुप्त वंश में उत्तराधिकार संबंधी कोई निश्चित नियम न था। परिस्थिति के अनुरूप कभी सिंहासन ज्येष्ठ पुत्र को प्राप्त होता था और कभी योग्यतम पुत्र को, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। अतः राज्यसभा में दलबंदी की संभावना सदैव बनी रहती थी। कभी कभी उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर राजपुत्रों में युद्ध भी हो जाता था। इससे राजशक्ति को बड़ा आघात पहुंचा था। उदाहरणार्थ चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन काल में ही उत्तराधिकार का प्रश्न विवादग्रस्त बन गया था। इसका निर्णय करने के लिए चंद्रगुप्त ने राज्यसभा का अधिवेशन किया। इसने बहुमत से समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी चुना। फिर भी कुछ राजकुमारों ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। परिणामतः उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। विरोधी पक्ष का नेता समुद्रगुप्त का भाई कांच प्रतीत होता है। इसी प्रकार सिंहासन के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। कुछ विद्वानों के अनुसार स्कंदगुप्त ने भी अपने भाई पुरुगुप्त को पराजित करके ही सिंहासन प्राप्त किया था। इन उत्तराधिकार युद्धों तथा तत्सम्बन्धी दलगत नीति के गुप्त साम्राज्य को बड़ी हानि पहुँचाई होगी। तीसरा, बाह्य आक्रमण। गुप्त साम्राज्य को कुलों ने बड़ी हानि पहुंचाई। उनका सर्वप्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ, परंतु स्कंदगुप्त ने असीम साहस और शौर्य का परिचय देते हुए हूणों को पराजित किया और गुप्त साम्राज्य को महाविनाश से बचाया। परंतु हूणों का खतरा सदैव के लिए समाप्त न हुआ। तोरमाण के नेतृत्व में उन्होंने 484 ईस्वी के आसपास कश्मीर, पंजाब और मालवा पर अधिकार कर लिया। तोरमाण की मृत्यु के पश्चात मिहिर कुल राजा हुआ। उसने नरसिंहगुप्त बालादित्य को पराजित करके प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ग्वालियर अभिलेख से प्रकट होता है कि मध्य भारत भी उसके अधीन था। इन हूण आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य के पतन में काफी योग दिया। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, स्कंदगुप्त के समय पुष्यमित्र नामक जाति ने भी गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण की भयंकरता का अनुमान इसी बात से होता है कि इस विपत्ति काल में स्कंदगुप्त को एक रात पृथ्वी पर सोकर व्यतीत करनी पड़ी। यद्यपि स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल हुआ, तथापि यह अनुमान किया जा सकता है कि इस आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य का धन जन बड़ी क्षति पहुँचाई होगी। स्कंदगुप्त की विपत्तियों से लाभ उठाकर संभवतः वाकाटकों ने भी गुप्त साम्राज्य के प्रति वैर भाव प्रदर्शित किया। यह अनुमान किया जाता है कि उन्होंने पुष्यमित्र और मालवा के गवर्नर स्कंदगुप्त के विरुद्ध सहायता दी होगी। डॉक्टर दांडेकर तो यहाँ तक कहते हैं कि वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने कम से कम कुछ समय के लिए मालवा स्कंदगुप्त से छीन लिया था। 532 ईस्वी के लगभग मध्य भारत में यशोधर्मा नामक एक पराक्रमी नरेश का उदय हुआ। उसने ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत तक और हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस साम्राज्य की स्थापना करते हुए उसने गुप्त नरेश को अवश्य पराजित किया होगा। यशोधर्मा के समय गुप्त साम्राज्य केवल मगध और उत्तरी बंगाल तक ही सीमित रहा होगा। निरंतर युद्ध। गुप्त सम्राट साम्राज्यवादी थे। समुद्रगुप्त ने प्रायः संपूर्ण भारत की दिग्विजय की। उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय को भी बंगाल से वाहलिक तक युद्ध करने पड़े। पश्चिमी भारत में शक राज का नाश करने में उससे सबसे महत्वपूर्ण युद्ध करना पड़ा। इन साम्राज्यवादी युद्धों में गुप्तों को धन जन की बड़ी हानि उठानी पड़ी होगी। प्रांतों की स्वतंत्रता। अवनति काल में गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ प्रांत स्नेह स्वतंत्र होने लगे। चंद्रगुप्त के पश्चात पश्चिमी भारत गुप्त साम्राज्य के बाहर निकल गया। 502 ईस्वी तक वल भी निश्चित रूप से गुप्त साम्राज्य के अधीन रहा, क्योंकि यहाँ के मैत्रक शासक ध्रुवसेन प्रथम को परम भट्टारकर गुप्त नरेश का पदानुध्यात कहा गया है। ध्रुवसेन प्रथम ने 545 ईस्वी तक राज्य किया। इसके पश्चात कभी बल भी स्वतंत्र हो गया था। मध्य प्रदेश में परिवारजक गुप्तों की अधीनता में राज्य करते थे। 515 ईस्वी के बैतूल अभिलेख और 529 के खो अभिलेख ताम्रपत्रों में परिवारजक नरेश संक्षोभ को गुप्तों के अधीन प्रदर्शित किया गया है। परंतु यह महत्वपूर्ण बात है कि इसमें गुप्त सम्राट का नाम नहीं मिलता। इससे अनुमान किया जाता है कि इस प्रदेश में गुप्तों की सत्ता धीरे धीरे क्षीण हो रही थी और अंत में वह विलुप्त हो गई। परिवारजक राज्य की सीमा पर भी उच्च कल्प राज्य था। इस वंश के नरेशों जयनाथ शवनाथ और इत्यादि के ताम्रपत्रों में गुप्त सम्राटों का कोई उल्लेख नहीं है। जयनाथ के खो अभिलेख की तिथि 513 ईस्वी है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह वंश इस तिथि तक पूर्ण स्वतंत्र हो गया था या नाम मात्र के लिए ही गुप्तों के अधीन था। गुणेधर ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि 188 गुप्त संवत अथवा 507 ईस्वी में वंग समतट प्रदेश में गुप्त सम्राट वैन्य गुप्त का राज्य था। इसके कुछ समय पश्चात ही हम इस प्रदेश में गोपचंद धर्मादित्य और समाचार देव का राज्य पाते हैं। इनका उल्लेख बंगाल के फदीरपुर जिले में प्राप्त तार ताम्रपत्र और बदरवनाव जिले के मल्लश रूल में प्राप्त एक अन्य ताम्रपत्र में इनका उल्लेख हुआ है। इन लेखों में इन्हें महाराजा धीराज कहा गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह एक स्वतंत्र राजवंश था और संभवतः इसी ने वंग तट में गुप्त आधिपत्य का अंत किया होगा। उत्तरी बंगाल में 543 ईस्वी के पश्चात गुप्त का कोई लेख नहीं मिलता। कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तरी बंगाल में गुप्त शासन का अंत करने वाला व्यक्ति कामरूप नरेश भती वर्मा था। बंग गंगा शिलालेख में इसे भास्कर वर्मा का पूर्वज बताया गया है। इस लेख की तिथि 244 गुप्त संवत अथवा 563 ईस्वी है। 554 ईस्वी के हरहा अभिलेख में मोखरी नरेश महाराज अधिराज ईशान वर्मा की विजय का उल्लेख है। संभव है कि इसने मगध में गुप्तों का अंत किया हो। यशोधर्मा का उदय। मंदसौर अभिलेख से प्रकट होता है कि 532 ईस्वी के आसपास मालवा में यशोधर्मा नाम के एक पराक्रमी राजा का उदय हुआ। इसने अनेक प्रदेशों को जीता तथा लौहित नदी से लेकर महेंद्र पर्वत तक तथा हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस वर्णन से अनुमान किया जाता है कि उसने गुप्त सम्राट को भी अपने अधीन कर लिया होगा। संभवतः यह गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बलादित्य रहा होगा। इस प्रकार धर्मा के उदय ने गुप्त साम्राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया होगा। कूटनीतिक संबंध का अभाव। गुप्तों ने अपने साम्राज्य विस्तार में सैनिक शक्ति के साथ साथ कूटनीति का भी प्रयोग किया। कूटनीति के अंतर्गत प्राचीन भारत में समकालीन वंशों के साथ विवाह संबंधों का बड़ा महत्व था। प्राचीन ग्रंथों में कन्या संधि का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम में तत्कालीन प्रख्यात लिच्छवी वंश की कन्या कुमार देवी के साथ विवाह करके उस वंश को अपना मित्र बना लिया। यही नहीं, उसने वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाकर एक साम्राज्य की नींव डाली। समुद्रगुप्त ने भी इस नीति का अनुसरण किया। उसने कुषाणों सखों और सिंहल नरेश आदि के साथ मैत्री संबंध बनाए। इन विदेशियों ने कन्योपायदान द्वारा समुद्रगुप्त को संतुष्ट किया। संभवतः वाकाटकों के साथ मैत्री संबंध रखने की इच्छा से प्रेरित होकर समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय के अवसर पर वाकाटक राज्य पर आक्रमण नहीं किया था। समुद्रगुप्त ने नागों को पराजित करने के पश्चात उन्हें अपना मित्र बनाने की भी चेष्टा की। उसने नागवंशी या कुबेर नागा के साथ अपने पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विवाह संबंधों द्वारा तत्कालीन राजवंशों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की। उसने कुबेर नागा से उत्पन्न अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। यह विवाह बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। वाकाटकों की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत के शकों को निकाला। अपने साक्ष्यों से प्रकट अनेक साक्ष्यों से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध कुंतल राज्य के कदंब वंश के साथ भी अच्छे थे और संभवतः उसने कदंब नरेश काकुस्थ वर्मन की पुत्री के साथ अपने किसी राजकुमार का विवाह कर दिया था। परंतु हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्त नरेशों ने तत्कालीन राजवंशों के साथ मैत्री संबंध बनाने के लिए उत्साह नहीं दिखाया। परिणामतः संकट काल में उन्हें अन्य राजवंशों से कोई सहायता न मिल सकी। अहिंसावादी बौद्ध नीति का अनुसरण। प्रारंभिक गुप्त सम्राट वैष्णव थे। वैष्णव धर्म से अनुप्राणित होकर उन्होंने देश को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता प्रदान की थी। शस्त्र और शास्त्र की रक्षा के लिए उन्होंने दंड नीति का आश्रय लिया था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि स्कंदगुप्त के पश्चात अनेक गुप्त नरेशों ने अहिंसात्मक बौद्ध धर्म को अपनाया। चीनी साक्ष्यों से प्रकट होता है कि शंकरादित्य ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी और जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। शंकरादित्य के तट के पश्चात बुद्धगुप्त राज, तथागत राज, बालादित्य राज, व्रज आदि ने इस विहार को महत्वपूर्ण सहायता दी। अंतिम चरण ने के अनेक गुप्त नरेशों के साथ परम भागवत की उपाधि का भी प्रयोग नहीं किया गया है। इससे भी अनेक बौद्ध होने का अप्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। इन बौद्ध धर्मावलंबी गुप्त नरेशों ने सैनिक शक्ति की उपेक्षा की हो या नितांत संभव है। आर्थिक क्षति, विशाल साम्राज्य की स्थापना तथा रक्षा के लिए किए गए निरंतर युद्धों ने गुप्त राजकोष पर बड़ा भार डाला होगा। कालांतर में पश्चिमोत्तर प्रदेश और पश्चिमी प्रदेशों के गुप्त साम्राज्य से निकल जाने के कारण गुप्तों के हाथ से व्यवस्थली और सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग भी निकल गए, जिनसे भारत और बाह्य संसार का संबंध स्थापित होता था। परिणामतः यह हुआ कि गुप्त साम्राज्य की आर्थिक अवस्था खराब होने लगी। इस असंतोषजनक आर्थिक अवस्था के संकेत हमें स्कंदगुप्त के शासनकाल से ही मिलने लगे थे। उसकी स्वर्ण मुद्राएं विशुद्ध धातु की न होकर मिश्रित धातु की हैं। उसकी मुद्राओं की संख्या भी कम है। स्वर्ण मुद्राओं की अपेक्षा स्कंदगुप्त की चांदी की मुद्राएं अधिक हैं। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने भी स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम चलाई। यह परिस्थिति आर्थिक दुर्व्यवस्था की ओर संकेत करती है। सामंतवाद का उदय। समुद्रगुप्त ने अनेक राजाओं को पराजित किया, परंतु उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। उसने राजाओं से अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर तथा उन्हें करद बनाकर छोड़ दिया। इस नीति से अनेक सामंत राज्यों का आविर्भाव हुआ। यद्यपि सामंत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैन्यगुप्त के गुणेधर अभिलेख में हुआ है। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों के अधीन अनेक सामंत शासक बड़े बड़े भू प्रदेशों में शासन करते थे। जब तक केंद्रीय सत्ता शक्तिशाली रही, तब तक ये सामंत छोटी उपाधियां धारण करते रहे और गुप्त सम्राट के प्रति अपनी अधीनता अथवा स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए अपने अभिलेखों में गुप्त सम्राट के नाम तथा गुप्त सम्मत का उल्लेख करते रहे। परंतु निर्बल गुप्त नरेशों के शासन काल में उन्होंने अपने अधिकार बढ़ा लिए। बुंदेलखंड में परिवारजक वंश गुप्तों के अधीन था। इस वंश में हस्तिन और संशोभ नामक राजाओं के 6 ताम्रपत्र मिले हैं। इसमें गुप्त सम्राट का नामोल्लेख नहीं किया गया है। बुंदेलखंड में परिवारजक राज्य के समीप ही उच्च कल्प वंश का राज्य था। यह वंश भी गुप्तों के अधीन शासन करता था। इस वंश के 7 ताम्रपत्र मिले हैं। इसमें उनके 2 राजाओं जयनाथ और सर्वनाथ था उनके पूर्वजों का उल्लेख है। ये लेख भी गुप्त सम्राट का नाम नहीं लेते। इसी प्रकार इलाहाबाद जिले और रीवा में 158 तिथि के 2 ताम्रपत्र मिले हैं। इसमें उस प्रदेश के महाराज लक्ष्मण का उल्लेख है, परंतु गुप्त सम्राट का उल्लेख नहीं है। अभी तक यह विश्वास किया जाता था कि 472 ईस्वी के पश्चात पश्चिमी मालवा में गुप्त कालीन कोई अभिलेख नहीं मिला है, परंतु हाल ही में डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार ने दो अभिलेख प्रदर्शित किए हैं। एक नीमीच के समीप चोटी सदरी में मिला है, इसकी तिथि 547 है। दूसरा अभिलेख मंदसौर में मिला है, इसमें कोई तिथि नहीं है। इन दोनों में गुप्त सम्राट का नाम नहीं मिलता। स्कंदगुप्त के अधीन अंतरवेदी का शासक अपने को केवल विषयपति कहता था, परंतु गुप्त के अधीन एरन का विषयपति अपने को महाराज कहने लगा। सुराष्ट्र में मैत्रक वंश गुप्त के अधीन सामंत वंश था। इस वंश का संस्थापक भट्टार्क और उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी धर्षेन सेनापति कहलाते थे, परंतु धर्षेन के उत्तराधिकारी दौड़ाशी ने महाराज की उपाधि धारण की। इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि स्कंदगुप्त के पश्चात सामंतों की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई, जिससे गुप्तों की केंद्रीय निर्बल हो गई। अंत में अनेक सामंत वंश स्वतंत्र हो गए।